मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 1 मई 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं निधि मीणा, आप उदयपुर राजस्थान से हैं, और आशी जायसवाल, आप बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं कल के ही अधूरे विषय को पूरा करना चाहूंगा और कल प्रारंभिक परीक्षा के तहत करंट अफेयर्स की आप तैयारी कैसे करेंगे उस पर मैंने कुछ बातें की थी, उसे ही मैं आज आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आइए इससे पहले हम थोड़ी दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक खबर आप लोगों ने अखबार में पढ़ी होगी जो एक तथ्य के रूप में है। मुझे इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जो जब आप किसी प्रश्न की व्याख्या कर रहे होते हैं या एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसका मूल्यांकन कर रहे होते हैं, तब ये तथ्य आपके काम आते हैं। और वो तथ्य ये है कि नारायण साई, आप जानते हैं नारायण साई को आशाराम बापू के पुत्र रहे हैं, इनको महिला उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, जो भी आप कह लें, उसके अपराध में आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई है। इनके पिता भी उसी तरह से कारावास भुगत रहे हैं और उनके ये पुत्र हैं वो भी भुगत रहे हैं। अब ये 3-4 साल पहले का मामला है, आप लोग को मालूम होगा, ये अखबारों में बहुत आया था। तो ये कंटेंट है कि जब इस तरह के कदम उठाए जाएंगे और खासकर जो पावरफुल लोग हैं, नो डाउट कि आशाराम बापू एक धार्मिक नेता के रूप में हमारे यहां माने जाते थे, आध्यात्मिक व्यक्ति माने जाते थे, और उनके पुत्र वो भी कहीं न कहीं उसी से ही जुड़े हुए थे। अगर उन लोगों के खिलाफ, मतलब ये पावरफुल लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, इनके पीछे जनमत भी है, इनके अनुयायी भी हैं, लेकिन जब ऐसे पावरफुल लोगों के खिलाफ न्यायालय जब इस तरह के निर्णय सुनाएगी तो इससे न्यायालय के प्रति तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा ही, साथ ही इस तरह के जो कृत्य होते हैं, जो कुकर्म होते हैं, उनको करने में भी लोगों के अंदर भय समाएगा। और सच पूछे तो जो सामाजिक व्यवस्था है वो दंड देने से ठीक नहीं होती है, दंड के भय से ठीक होती है। और दंड दिया ही इसलिए जाता है, सामान्यतः उसका मुख्य उद्देश्य दंड देकर के उससे, उस व्यक्ति जिसने अपराध किया है उससे प्रतिशोध लेना नहीं होता सामान्य तौर पर, बल्कि समाज को यह संदेश देना होता है कि ऐसा करने पर ऐसी सजा मिलेगी और इसी से सामाजिक व्यवस्था कायम भी होती है। दोस्तों, जो दूसरी खबर है, अखबारों में पढ़ा हो, शायद सभी अखबारों में न भी हो, कुछ में बड़े खूबसूरती के साथ ही खबर आई है कि जो जापान के सम्राट हैं, जापान के सम्राट अभी जो थे अकिहितो, उन्होंने स्वेच्छा से अपने पद का त्याग किया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सम्राट स्वेच्छा से पद का त्याग कर रहा, उनके 85 वर्ष की उम्र हो गई थी। उनको लग रहा था कि अब मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाऊंगा, तो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है और उनकी जगह पर उनके जो पुत्र है नारुहितो, वो अब जापान के सम्राट बनाए गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर कितनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, चूंकि जापान की बात है, एशिया का देश है, जापान हमारा मित्र भी है, तो थोड़ी सी, चूंकि वहां के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, तो थोड़ी सी इसकी जानकारी होनी चाहिए। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा स्पेशली, हो सकता है कि ये प्रश्न प्री के लिए मौजू हो, वो ये कि जापान में सम्राट के आधार पर युग के नाम बनते हैं। जो अकिहितो का जो काल रहा है उसे कहा जाता है हेइसेई युग, हेइसेई युग। तो जैसे ही अकिहितो का ने सम्राट का पद छोड़ दिया है, वैसे ये युग समाप्त हो गया है और अब जापान में नए युग की शुरुआत हुई हो गई है, जिसे कहा जाएगा रेवा युग। तो ये दो शब्द आप याद रखिएगा, हेइसेई युग और रेवा युग। यहां देखिए, हम सम्राट की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि जापान में नो डाउट सम्राट है, ठीक वैसे जैसे ब्रिटेन में अभी भी महारानी है, राइट? उसी पैटर्न पर लगभग जापान की भी पॉलिटिकल व्यवस्था है। जैसे जो सम्राट है, सम्राट हेड है, लेकिन उसके पास उस तरह के बहुत अधिकार नहीं है। जैसे अगर सरल तरीके से समझना चाहे तो आप कह लीजिए हमारे यहां के राष्ट्रपति, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। फर्क यह है कि जो जापान के सम्राट है वो वंशानुगत होंगे, जो ब्रिटेन की महारानी है वो वंशानुगत होगी, उनके बेटे वंशानुगत होंगे। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रपति ऐसा नहीं है, हमारे यहां राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो वहां चूंकि वंशानुगत है इसीलिए आप ये मत समझ लीजिएगा, गलत फहमी मत पाल लीजिएगा कि वहां कोई राजतंत्र है, नहीं, वहां भी बकायदे पार्लियामेंट्री सिस्टम ही काम कर रही है। वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को आप पार्लियामेंट्री सिस्टम ही कहेंगे, और यदि आपको राजतंत्र कहना ही है कि मोनार्क है, तो फिर आपको कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र है, संविधान के तहत काम हो रहा है, राजा की इच्छा के तहत काम नहीं हो रहा है। बाकी चीजें किसी भी संसदीय प्रणाली की तरह है, वहां भी संसद के दो सदन हैं, उनके चुनाव होते हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो वहां का प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री फिर अपनी कैबिनेट बनाता है, और उसी तरह से सरकार काम करती है जिस तरह से हमारे यहां काम करती है। तो ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। दोस्तों, फनी को लेकर के कुछ मामला गड़बड़ सा ही हो रहा है, अभी तक मैं नाम मतलब इसकी स्पेलिंग डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि इसकी सही स्पेलिंग क्या है। पहले मैंने FUNNY बताया था क्योंकि उस समय बकायदे FUNNY आ रहा था, अब वो दो स्पेलिंग और मिल रही है, PHANI और FANI, और चैनल्स पर भी आपको कहीं फानी मिलेगा, कहीं फैनी मिलेगा, कहीं फनी मिलेगा। चलिए अभी इसे छोड़ते हैं कि इसका सही नाम क्या है, स्थापित हो जाने दीजिए। लेकिन एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये जो नाम है, देखिए अलग अलग देश अपनी अपनी तरफ से नाम की लिस्ट देते हैं, और जो रखने का काम करता है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप हिंदी में कहेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा था कि ये बांग्लादेश ने नाम दिया है, तो ये बांग्लादेश ने रखा नहीं है, मतलब हर देश अपने नाम की एक सूची दे देता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन को, और फिर वो अल्फाबेटिकली जब उसका नंबर आता है तो वह उसे उस जो तूफान होता है उस तरह का नाम दे देता है। यानी कि नाम देने का जो काम है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन करता है, जिसे इंग्लिश में आप कहेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, आज के करंट कंटेंट में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था और प्रकाश सिंह जी ने लिखा है। प्रकाश सिंह खुद इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर रहे हैं और लगातार इनके लेख आते रहते हैं, और मैंने पाया है कि ज्यादातर इनके लेख जो होते हैं वो पुलिस प्रशासन के सुधार पर ही होते हैं। चूंकि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको इस तरह के जब भी लेख पढ़ने को मिले, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हो या पुलिस प्रशासन में सुधार हो, तो हमेशा उसको गौर से पढ़ना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट भी कर लेने चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, लेकिन मुख्य विषय के बारे में मैं बात करूं इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहूंगा, यूं कह लीजिए कि एक विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, और विनम्र अनुरोध यह है कि आप YouTube पर जब जाएंगे तो एक स्टूडेंट, एक जिनका IAS में सिलेक्शन हुआ है, जिनकी 28th रैंक रही, 28वां स्थान जिन्होंने हासिल किया है, काजल जावला इनका नाम है, उनके नाम से आप सर्च कीजिए, आपको इनका इंटरव्यू मिलेगा। इंटरव्यू उस तरह से नहीं है कि कोई सामने सामने बैठ करके ले रहा हो, जागरण जोश ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे हैं और उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब इसे सुने और बहुत ध्यान से सुने। देखिए, ये कोई फिल्मी गाना नहीं है, ये कहानी नहीं है, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं काजल जावला को, क्योंकि मैंने उनका सुना, कल सुना, बहुत ध्यान से सुना, बहुत ही संतुलित तरीके से, बहुत ही व्यावहारिक तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है और बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने को कहीं ग्लोरीफाई नहीं किया है, कहीं अपनी महानता का बखान नहीं किया है। उन्होंने क्या कहा है यह मैं बताने नहीं जा रहा हूं, यह सब आप लोग सुनिए। हो सकता है कि काजल जावला के इंटरव्यू को आधार बना करके मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आगे चलकर आपसे करूं, और यदि आप उससे पहले उनके इंटरव्यू को सुन चुके होंगे तो डेफिनेटली मेरी बात आपके और ज्यादा समझ में आएगी, और इस तरह से जब बात ज्यादा समझ में आती है तो आपके ज्यादा काम की भी होती है। दोस्तों, अब मैं मुख्य विषय के बारे में जो एक दो टिप्स और जो मुझे जरूरी मालूम पड़े करंट अफेयर्स को लेकर के मैं वो देने जा रहा हूं। देखिए, जो करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन की मैंने बात की उसके लिए क्या आपके पास अब आधारभूत सामग्री हो सकती है, कल मैंने चर्चा की थी, लेकिन पढ़ना अलग बात होता है, इसे समझिए, पढ़ना अलग बात है। सिविल सर्विस की तैयारी करना अलग बात है, इसको पढ़ने में ही मान लीजिए, लेकिन परीक्षा की तैयारी करना दोस्तों अलग बात होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिविल सर्विस की तैयारी करना अलग बात है, लेकिन परीक्षा की तैयारी करना अलग बात है। जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके सामने जो केंद्र में होता है वो क्या होता है, सिलेबस होता है। आप सिलेबस के आधार पर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं, इसे आप प्रारंभिक परीक्षा में भी लागू कर लीजिए। लेकिन जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, चाहे वो प्री एग्जाम हो जो अभी आपके 2 जून को है, या मेन एग्जाम हो जो आगे चलकर आपके सितंबर में होंगे, तो जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपकी तैयारी के केंद्र में होते हैं अनसॉल्व्ड पेपर। यानी कि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप बहुत व्यापक रूप में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां हम सेलेक्टिव हो जाते हैं, अपने लिए कुछ चीजों को चुनते हैं और उनको पढ़ते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उन पर ज्यादा गौर फरमाते हैं और उन्हें बार बार रिपीट करते हैं, कई कई बार रिपीट करते हैं, तब जाकर के वो हमारे दिमाग का हिस्सा बन पाते हैं। इस तरह से हिस्सा बन पाते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जरूरत पड़ने पर वो फट से हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, अदरवाइज बात नहीं बनती। दोस्तों, इसी तथ्य को आपको करंट अफेयर्स की तैयारी के बारे में अप्लाई कर लेना चाहिए, जो अभी आपके प्री की तैयारी आप कर रहे हैं। यानी कि करंट अफेयर्स का खजाना, इंफॉर्मेशन का खजाना आपके पास है, उनमें से आप कुछ सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि अब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से कुछ सेलेक्ट कीजिए कि आपको कौन कौन से तथ्य इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और अब उनको आप बार बार रिपीट कीजिए। देखिए, आज जो मैं आपसे एक नई बात कहने जा रहा हूं वो केवल रिविजन को लेकर के ही है, उन्हें आप कई कई बार पढ़िए, एक दो बार नहीं, कई कई बार पढ़िए। जब तक आप उसे कई कई बार नहीं पढ़ेंगे तब तक वो आपके दिमाग में चीजें नहीं बैठेंगी और तब तक वो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी मदद नहीं करेंगी। एक काम आप और भी कर सकते हैं कि जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल लिए हैं या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल ली हैं, आप चाहें तो बकायदे उन्हें भी आप 2 या 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। एक को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जिसे आप कई कई बार रिवाइज करेंगे, दूसरे को थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जिन्हें आप 3-4 बार रिवाइज करेंगे, और बाकी को आप सिर्फ इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए कि ठीक है चलिए 1-2 बार पढ़ लिया और इसके बाद छोड़ दिया, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे आप पता नहीं कितनी बार रिवाइज, आप या आपके ऊपर है कि आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात मुझे आज आपसे और करनी थी। मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बारे में फ्रेंड्स, आज मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स हैं। एक तो जो अभी आरबीआई पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग आदेश दिया है सूचना के अधिकार को लेकर के, इस पर बहुत अच्छे आज एडिटोरियल कमेंट है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसे आप जरूर पढ़िएगा, और उसमें जो इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल कमेंट है वो बहुत अच्छा है। मैंने सोचा था कि इसके बारे में मैं सीधे आपसे बात करूंगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इसके बाद 2 बड़े आर्टिकल हैं दोस्तों, एक तो हिंदुस्तान को मेल न्यूट्रिशन से कैसे, यानी कुपोषण से कैसे बचाया जाए, और दूसरा है लिबरल डेमोक्रेसी की जो क्राइसिस दिखाई दे रही है, इसको लेकर के एक आर्टिकल है जो हिंदू में है। मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों पर मैं आपको हिंदी के आर्टिकल उपलब्ध कराऊंगा, और एक तीसरा आर्टिकल है अरविंद पनगरिया जी का जो स्वच्छता अभियान पर है। स्वच्छता अभियान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं, और इन तीनों के मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी यदि हो सके तो आप अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ईमेल लिखे हैं, और उन्हीं में से 4 दोस्तों के नाम हैं, अमिताभ शुक्ला, रिंकू शर्मा, सैफ मोहम्मद कर्नाटक से, और प्रेमचंद यादव। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।